वन फोर्थ के करीब है दास्य प्रेम, इसलिए उतने तप का आस्वादन करते हैं। सखाओं में, ब्रज के सखाओं में ये तीन तक हैं, शांत दास्य सख, उसमें सख भाव से कृष्ण को का प्रेम आस्वादन करते हैं, देख करके कृष्ण को उनको बड़ा आनंद करता है। और इससे अधिक यशोदा मैया नंद बाबा को उससे भी अधिक ममत्व उनके प्रति है, इसलिए उनको अधिक आनंद होता है। और उससे भी आनंद किसको होता है, गोपियों को, गोपियों में भी तारतम्य है, जिसको अधिक प्रेम है वो अधिक है, श्रीमती राधिका में ये सबसे अधिक है, इसलिए कृष्ण को देखते ही उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है महामादन मोदन तक जो और किसी में। इसलिए कृष्ण को देख करके या इनको देख करके कृष्ण को जो प्रीति होती है वो सब कुछ निर्भर है प्रेम के ऊपर, जिसमें गोपियों में सबसे अधिक, इन गोपियों में भी राधा जी की काय दिन स्वरूपा जो गोपियां हैं, उनकी पक्षी जो गोपियां हैं, ललिता विशाखा इत्यादि है, उनमें जो भाव है मोदन तक है मोहन, अर्थात उनमें भी कभी कभी ये उन्मार प्रेमुख दिव्य उन्मार, और उनमें कभी कभी आंशिक रूप में प्रेम वैचित्र इत्यादि देखा जाएगा, किंतु राधा जी का अंतिम जो भाव है मिलन में भी विरह, अब विरह में मिलन और भी परिपूर्ण रूप से और किसी ने नहीं। इसलिए आश्लेषवाद जो श्लोक है वो केवल श्रीमती राधिका जी के, कृष्ण उस चीज का आस्वादन करने के लिए आते हैं। और ये ब्रज के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, ब्रज नहीं केवल है, कल हमने परसों हमने तात्पर्य मूलक दृष्टि से बतलाया, इसलिए करें पारकीय भावे अति रसिक उल्लास, ब्रज बिना नहीं यहां अन्यत्र नहीं का, ब्रज बधु गणे एक भाव निरवधि धारणा हो गया, तार मध्य राधिकार भावे अवधि, राधिकार अवधि जैसा भी भक्त है, कृष्णर माधुर्य रस आस्वादन कारण पते से भाव अंगीकार करी साधने में निज बंधा हो, गौधरी इसी भाव को लेकर के इस जगत में। इसी के लिए हमारे चैतन्य को चामत्कार सुगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सौमाला से रूप गोस्वामी के दो श्लोकों को लिया, चैतन्य अष्टक प्रथम, चैतन्य अष्टक द्वितीय का श्लोक, जिसमें पहले वाले का हमने व्याख्या की, सुरेशानां दुर्गम गति अतिशयेन उपनिषदां मुनिनां सर्वस्वं प्रणत पतदीनां गुरुनां दिव्यज्ञास प्रेमो निखिल पशुपालं दुर्दिशा सचैतन्य पुने पुनरपि त्रिशोच्यास। ये हमने व्याख्या किया, साधारण सुरेशानां दुर्गम, देवताओं के लिए जिन चैतन्य महाप्रभु को समझना बड़ा भारी कठिन है, दुर्गम है, दुर्बुद्ध महाप्रभु जी का तत्व, और उपनिषदों के लिए भी कुछ कुछ कम में है थोड़ा सा, कौन से उपनिषद, गोपाल साधन इत्यादि, और मुनियन सर्वस्वम, मुनियों के लिए सर्वस्व, और प्रणत पठनी नंद अभिना, जो प्रणत शरणागत जो दास भक्ति वाले जो दास हैं उनके लिए वो मधुरतम मधुर विषय है, मधुरना उनके लिए माधुरी, हनुमान इत्यादि दासों के लिए, ब्रज के दासों के लिए, और निखिल पशुपालंब के दिशा, निखिल माने समस्त पशुपाला अंबुजा, पशुपाला गोपी, और दिशांग अंबुज दिशांग कमल नयनी जो गोपियां हैं उनके दृशांग दिशांग माने आंखों में जो रस निर्यास है वही चैतन्य भाव। गोपियों के आंखों में सब समय बसने वाले, अपनी आंखों से जिनकी प्रेम पूर्वक आरती उतारती है, गोपी नैनो प्लार्थित तरुण गो गोप संघावितम गोविंदम कलदेवादन परम दिव्यंगम भूषा भजे। तो ये प्रेम के निर्यास हैं। कौन सी चैतन्य महाप्रभु, वो क्या अब हमें दिखाई पड़ेंगे? रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे आंखों के सामने पुनः आएंगे, इसलिए ये पूछ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब तो अब अप्रकट लीला में चले गए, क्या अनुग्रह करके फिर आएंगे हमारे आंखों के सामने प्रकटित होंगे? हो सकते हैं, क्योंकि भक्तों के हृदय में वो जब तक कभी भी दर्शन दे सकते हैं। अभी वृंदावन में जैसे कृष्ण दर्शन देते हैं वैसे दे सकते हैं, इसलिए आप फिर कभी आ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। अपारम कस्यापि प्रणयजन बिंदस्य कुतुके रसोस्तो महित्वा मधुर मुखभोक्तम तमपियः कदा समग्रे दुतिनिहद्दीयान् प्रकटयन् स चैतन्या आकृतितरम् न कीर्तयतु। अपारम कस्यापि प्रणयजन बिंदस्य कुतुके, प्रणयजन प्रणयी जन बृंदस्य कुतुके, प्रणयी जन कृष्ण के जो प्रणय के जो पात्र हैं, प्रणयी लोग हैं, सोमत भाई सुवर्तिता से सुनने की चेष्टा करो। कृष्ण के जो प्रणयी है, प्रणयी माने कृष्ण के प्रति प्रणय करने वाले, और कृष्ण जिसके प्रति प्रणय करते हैं, ये दोनों भाव कौन है? ब्रज के सभी लोग हैं, सभी लोगों में ब्रज के सख्य भाव अनिश्चित या बात्सल्य भाव निश्चित जो दास्य हैं, वो भी कृष्ण के प्रणय प्रति प्रणय रखते हैं, किंतु प्रणय का अर्थ माने वो प्रणय से प्रणय जो हुआ है वो नहीं, वो दास्य भक्ति में नहीं, स्नेह मान प्रणय जो है, जब प्रेम बढ़ करके स्नेह हो जाता है और स्नेह बढ़ करके मान हो जाता है और मान बढ़ करके जब प्रणय हो जाता है, अथवा स्नेह बढ़ करके प्रणय होकर के फिर मान होता है, दोनों तरह से। वो जो प्रणय है वो एक दूसरा चीज है, वो प्रणय यहां पर बतलाया जा रहा है। ये किसमें है? सखाओं में भी है, उनके प्रणयी हैं, मित्र हैं, वो है। ये प्रणय भी दो प्रकार का, सुसख्य और मैत्री। एक कुसुम्भरायुक्त और एक मंजिष्ठा। हाँ वही प्रणय वही है, दो प्रकार का, वहीं से आरंभ हुआ। एक मध्यस्थ भाव, एक तटियस्थ भाव। सखाओं में कुछ कम, अब इसे बढ़कर के माता जी ने कुछ, कृष्ण मेरा बेटा है, कृष्ण की मैया नहीं, और गोपियों में यह भाव प्रबल होता है, जिसमें एक होता है कि कृष्ण की मैं हूं, तदीय एक प्रणय होता है, तभी यह भाव युक्त कृष्ण की मैं हूं। बहुत ही कठिन है ये बात, कृष्ण की मैं, कृष्ण हमारा संपूर्ण से पालन पोषण करना इत्यादि सब कुछ वही करते हैं, एक भाव को ये। और दूसरा क्या है? कृष्ण मेरे हैं, मैं कैसे उठाऊंगा बैठाऊंगा, कृष्ण ऐसे उठे बैठेंगे। दोनों में गंभीर किसका हुआ? ये मध्य भाव। इसमें जो विपक्षा सखियां हैं चंद्रावली इत्यादि, उसमें प्रति भाव है। यही मुख्य दो कारण है सखियों के विभाग का, मैं मात्र दो कारण तबियत पर मतलब जो तबियत के निकट है वो विपक्ष का प्रिय विपक्ष का सुहृद है, और जो स्वपक्ष मैंने जो मध्य भाव है उसके जो निकट है वो सुहृद विपक्ष का सुहृद स्वपक्ष का तटस्थ और उसका तटस्थ इसका इस प्रकार से है। तो यह जिसमें एक होता है कोई चीज एक रंग दिया जाए, जैसे फूल है लाल लाल फूल फूल एक होता है, सूरज की किरणों से थोड़ी देर के बाद में वो फिर सफेद हो जाएगा, उसका रंग उठ जाएगा कच्चा रंग और जिसका रंग है जो जितना सूर्य उगता जाएगा उतना वो गाढ़ा होता जाएगा, उसको पानी से धो तो और चटकीला हो जाएगा। जैसे आप लोग ऊंचा गांव में जाइए तो देखेंगे ललिता जी के अवता पहाड़ी में, ऐसे नहीं दिखेगा पानी से जहां धो दो घी लगा दो कोई ऐसा रसस तो एकदम चटकीला हो जाएगा। कड़ी पक्ष है अजय बीच बीच में लगा देते हैं रंग नहीं, ऐसा नहीं सनात हम लोग के वो परिक्रमाथी की पुस्तक है नहल चक्र बथनी रत्ना और उससे पहले पद्म पुराण इत्यादि में उसका बतलाया गया जी वहां पर भलता पाई है उस कारण ऐसा है, इसलिए आजकल लगा करके फिर चटकीला कर देते हैं ऐसा नहीं, हजार पानी से धो नहीं उठेगा। ये है मतीय भाव, ये प्रणय जो है केवल राधिका जी के ही पड़े। अब यहीं से आरंभ हो करके कहां तक पहुंच जाएगा, तो ये जो प्रणय है प्रणयी जन ऐसे जो प्रणयी कृष्ण के प्रति हैं, मैंने गोपी जन और भी प्रणय है किंतु ये मुख्य है। गोपी जन में भी यहां तक यद्यपि प्रणयी जन बृंदस्य प्रणयी बृंद माने समस्त गोपियों के, किंतु मूल राधा जी का भाव लेकर के आए थे। अपारम कश्यापि कश्य अपि गोपियों के जो समूह है उनमें से किसी एक का भाव लेकर के जो आने वाले, वे कौन? वही श्रीमती राधिका जी, उन्हीं का भाव लेकर के ये आए हैं और सब इनकी कायती है, वो लता है और बाकी सब उनके पत्र पुष्प है। तो वे कौतुकी, कौतुकी माने रस लोलुप, ऐसे वो लोलुप हैं कि एक मैया के दुख से उनका पेट नहीं भरा। बलदेव जी कह रहे तू कैसा इतना भाग किया है, इतने बछड़े और इतने गोप कुमार तू बन गया किस लिए? एक मैया यशोदा जी का दुख पीने से पेट नहीं भरता तो इतनी गोपियों का बेटा तू बन गया इतना, और उसे भी पेट नहीं भरा तो इतनी गायों का बेटा बन गया बछड़ा बन गया, तो अद्भुत बात। तो ये कौतुकी अतः रस लोलुप है। एक गोपी श्रीमती राधिका जी काय दूर करके अनंत गोपियों के रूप में प्रकट हो जाती, उससे भी नहीं हुआ तो राधिका जी ने क्या किया और अपना प्रकाश द्वारका में 16,108 को, उससे भी नहीं हुआ बैकुंठ में, उससे भी नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? राधा जी ने अपना जो संबित और सार है वो जो प्रेम वो जीवों के स्वरूप में निक्षेप किया, अनिक्षेप करके प्रत्येक जीवों का रसास्वादन करा दिया। कुतुकी रसस्तोमम हृत्वा, उनके रस समूह को हृत्वा माने हरण कर चोरी कर मधुरम
उपभोग के लिए उनके इस नदी भाव को उपभोग करने के लिए रसा पारण करने के लिए कमति ज रुचन स्वाम आबद्रे जो राधिका जी के कष्ट आते जो राधा जी हैं उनके रुचि मने अंग कांति से अपने को सम्मने अपने को अबब्रे आवृत कर दिया अपने को आवृत कर दिया और राधा जी का अंग कांति ग्रहण करके और उसका विस्तार किया। ऊपर से लोग देखते हैं कौन है गौरव और भीतर से कौन है क्यों ऐसा किया एक चोर है चोरी करने गया वैसे गृह मालिक सोया है खाट पर और उसकी चादर पड़ी है उसने इस ढंग से गृह मालिक को ढक दिया और ढक करके उसकी चादर ले ली और उसकी चादर लेकर के अपने को ढक लिया। जो घर वाले यदि हमको देख लिया तो ये समझेंगे कि वही घर का मालिक ही है और आम रखा है या कुछ रखा है उसको चुरा करके खाने दे करके भी नहीं सकते। आप कभी कभी चोरों को देखते हैं वो यहाँ पर मूछ लगा लेंगे काला और मुंह को कपड़े से ढक करके केवल आंख से देखते हैं जिसको देख करके कोई समझ नहीं पहचान नहीं सकता। देश बदलना जरूरी है चोरों के लिए बताया भी ऐसा था यदि देख लिया कि वो पहचान गया तो उसको कत्ल कर दें तो जान लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने आराधिका जी का भाव लिया चोरी करके। अब दूसरा बात था जो पहले बतलाए हैं बिना वो प्रणय का भाव जो राधिका जी में है वो असाधन अपने आप वो तीन प्रकार की माधुरी को नहीं करें इसलिए अंदर से उनके भावों को चोरी किया और ऊपर से उनके अंग कांति को ग्रहण करके इस जगत में आए। इसलिए चोरी किया आसादन करना है भाव के द्वारा आसादन होगा किंतु इनको कोई चोर को पकड़ न सके इसलिए ऊपर से ये कांति भक्त करके अपने को कृष्णत्व को बता करके ऊपर से गौर करने किया। लोग न समझे इसलिए अंता कृष्ण बहुत गौरव दशता अंग वैभवम दूसरा कुछ एक आधार दूसरे का देता है। कौतुकी रसोत्तम भूतवा अपहरण करके मधुरम उपभोक्तम मधुर रस को उपभोग करने के लिए चार प्रकार तीन प्रकार की जन जो कृष्ण रुचम समावादरे अपने को ढक लिया आप दूतम इह इनकी दूती से किसकी कश्याती प्रणय जन की तो किसी एक प्रणय और तदीयान प्रकटन यह चैतन्य चैतन्यपराम महाप्रीतिय वो चैतन्य महाप्रभु हमको अनुग्रह करें। कब अनुग्रह करेंगे भार ग्रहण हेतु करिल धर्म स्थापन पार मुख्य हेतु कही सुन सर्वजन। हे सर्वजन श्रोता लोग आप सुनिए भार भाव ग्रहण हेतु करिल धर्म स्थापन पार मुख्य हेतु कही सुन सर्वजन भाव ग्रहण का हेतु मैंने बतलाया है पहले करिल करिल मैंने कही लो ऐसे समझने सज नहीं आएगा इस तरह से समझना नहीं तो समझ जाएगा जिसे भाव ग्रहण हेतु करिल धर्म स्थापन भाव ग्रहण के हेतु धर्म की स्थापना की तो इसका अर्थ क्या होगा भाव ग्रहण के हेतु धर्म का स्थापन किया भाव ग्रहण हेतु मैंने धर्म का स्थापन धर्म के स्थापन के लिए भाव ग्रहण किया न क्या होगा इसलिए भाव ग्रहण हेतु कहीगा मैंने पहले कहा आज धर्म स्थापन पार मुख्य हेतु कही और धर्म स्थापन भी मैंने कहा कि धर्म स्थापन उनका मुख्य अंग नहीं है कारण नहीं है। अब मैं तार मुख्य हेतु कहीं सुनो सर्वजन, अब मैं उसका मुख्य जो हेतु है, अब मैं भाव ग्रहण भी किया किस लिए, ये मुखंग नहीं है। हमने कपड़ा ओढ़ लिया किसी का और चोरी करने के लिए गए, ये हमने जो कपड़ा ओढ़ा किस लिए, चोरी करना हमारा मुख्य उद्देश्य। उसके घर में रत्न है, रत्नों को चुराना हमारा मुख्य उद्देश्य, कपड़ा हमने घर लिया। तो उन्होंने जो भाव लिया किस लिए, आस्वादन करने के लिए, ये अभी बतलाया जिस हेतु को लेकर के आए। अब धर्म का जो स्थापन है ये भी मैंने बतलाया, ये मुख्य कारण नहीं है। अब जो जिस हेतु से उन्होंने भाव को ग्रहण किया, राधा जी का अंग काम किया और उनका भाव किस लिए, कृष्ण के प्रेम का स्वादन करने के लिए, कृष्ण अपना ही प्रेम स्वादन करने के लिए, अपने रूप माधुरी इत्यादि। राधा जी का जो भाव लिया किस लिए, किस लिए, क्या साधन करेंगे, अपना अपनी माधुरी में अपना प्रणय और कम जातीय सुख हो राधा जी को होता, ये राधा जी का भाव लिए बिना कभी संभव पर नहीं, इसलिए उस भाव को लिया। किंतु किस लिए लिया, इसलिए मुख्य न होकर के गम रहेगा। आ रहा है कुछ समझ में, नहीं आया फिर से देखो, राधा जी का भाव लिया ये मुख्य हेतु नहीं है। क्यों, क्योंकि राधा जी का भाव लेकर के एक चीज दूसरे चीज को ग्रहण करना चाहते हैं, आस्वादन करना, वो ग्रहण करना क्या है, वही मुख्य है। वो क्या, आस्वादन, जो प्रणय है मधुरिमा का आस्वादन है और उससे जो उत्पन्न होता है सुख, राधा जी को जिस रूप में होता है उस चीज को आस्वादन करिए, राधा जी का भाव जरूर चाहिए। इसलिए राधा जी का भाव हेतु हुआ प्राप्ति के लिए एक मूल चीज को, मूल गोल चीज को, माने जो तात्पर्य मूल है क्या है, मैं कैसा सुंदर हूं, हमारी मधुरिमा कैसी है, राधा जी का हमारे प्रति प्रणय कैसा है, और राधा जी को हमको देकर के कैसा सुख होता है, ये तीन चीज की लालसा है। इसलिए उन्होंने राधा भाव जी को अंगीकार किया, ये अक्षम क्यों, इसलिए ये मुख्य न होकर के ये साधन है, साधन है ना, उपाय है आस्वादन करने के लिए। इसलिए अब मूल हेतु जो कर रहे हैं जिसका आस्वादन करने के लिए, वो अब चीज बतला रहा, क्या आस्वादन करेंगे, एक तो बतलाया साधन मुख में राधा है, अब इसको ये बतला रहे हैं मूल हेतु आगे श्लोक कई बार आभास, अभी आभास बतला पीठ तैयार किया, कोई चीज को अवतरण कराने के लिए उसके लिए बलदेव जी पहले आएंगे पीठ होकर के कृष्ण जी वहां अवतरण, पहले इसी तरह से सर्वत्र है पीठ होना चाहिए, आधार ही नहीं है तो क्या प्रेम होगा, इसलिए पहले आधार हो। मूल हेतु आदेश लोके कैल आभास, अब देखो बतला रहे हैं यदि कहीं ये श्लोके अर्थ प्रकाश, अब मैं इस श्लोक को बतला करके आगे इसका अर्थ प्रकाश करता हूं। कृष्णदास यदि भागवत को पढ़ना है ना, तो आस्वादन करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी से तरीका समझो, एक एक अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ अच्छी तरह से विचार करके आस्वादन करो। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे सकल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण नयनाभिराम, हा हा सदानुभविताश्च पदरंजिषो। कैसा एक एक का अर्थ लेकर के और अलग अलग करता है, इसका भी अब ऐसे ही कहेंगे। किसी चीज को समझने के लिए एकदम गंभीर रूप से उस शब्द नहीं उस अर्थ का अर्थ चिता, किंतु अर्थ लगाया जाता है वैसा व्यक्ति हो तो। यदि ये इन श्लोकों का श्रीमद् भागवत का अर्थ नहीं करते, जैसे कि कुरुक्षेत्र में गोपियां गई हैं कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में नंद बाबा इत्यादि, वहां पर इसको क्या है याद गुप्त कृष्ण उपलब्ध किरादिष्टम जब प्रेक्षणे इत्यादि श्लोक है। किराद अभिष्टम कृष्ण को आज बहुत दिनों के बाद में पाया, बस कृष्ण को अपनी आंखों के माध्यम से हृदय में लेकर और एकदम अंक में भर और जड़ जैसी बन गई। इस सब का जो वर्णन किया है ये चैतन्य चैतामृत में वो त्रिपदी के द्वारा वर्णन किया, ये सब कहां से दिया है? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि से ये सब। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन्हीं का तरीका अवलंबन किया, एक एक शब्द का ऐसे कैसे अर्थ लेकर के मुक्त प्रग्रह वृत्ति से हजारों अर्थ कर लेते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने आत्मारम सुननीय उर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्त अहेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणोहरि, इसका अर्थ कहां तक ले जाएंगे? आत्मारामश्च मुनयो क्या निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, उरुक्रमे उरु जिनका क्रम है वामन देव, ना तो उरुक्रम जिनका है त्रिविक्रम, ना उरुक्रम जिनका है वैकुंठ पर, नहीं इससे भी और अहेतु किम क्या अहेतु की भक्ति से क्या समझते हो? अभी बतलाया था कुछ दिन पहले अहेतु की भक्ति माने क्या है? प्रभुपाद जी ने कहा शुद्धा भक्ति, शुद्धा भक्ति किसको कहते हैं? रागानुगा। इसकी पर्य समाप्ति कहां होती है? रागात्मिका भक्ति। इसलिए गोपियों के रागात्मिक भक्ति को कृष्ण के प्रति अनुराग को यहां पर अहेतु की भक्ति। अब उरुक्रम माने जिनका क्रम बढ़ता है, कैसे कृष्ण के जो ब्रज के जो गुण हैं कितने चौसठ होंगे उनतीस या कितना? अच्छा ये जो भक्त स्वामी सिंधु में सुरमंग सुरमंग, तो ये सब गुण जहां पर कृष्ण के अत्यंत मधुर रस के अनुरूप कृष्ण का ये सब गुण प्रकाशित हुआ, वो है उरुक्रम। उरुक्रम उरुक्रम ही जिनके चित्त के याने अथवा उरुक्रम के चित्त के ज्ञान के, ये चित्त कौन है? गोपियां। कृष्ण निरंतर अपने मन के रथ के ऊपर में गोपियों को बैठाए हुए उन्हीं की चिंता कर, अथवा गोपियां कृष्ण को अपने मनोरथ पर सब समय चिंतन का करती है, दोनों अर्थ। यहां पर उरुक्रम से जहां गुरुक्रम ले जाओ और ऐसु की भक्ति से लेकर के लेते चलो स्नेह मानते हैं और आगे तक बढ़ो, ऐसे गुरु को अनुभव करके सुखदेव गोस्वामी जी जन्म से जो नैर्गुण्य है उस नैर्गुण्य को छोड़ करके जलांजलि दे करके आप उस प्रेम में डूब गए, ये तात्पर्य। इसलिए ये लोग यदि अर्थों को प्रकाश नहीं करते हम लोग नहीं समझ सकते थे, केवल साधारण अर्थ से श्रीमद् भागवत को नहीं देखा जाए। चैतन्य महाप्रभु ने जिस दृष्टि से देखा उस दृष्टि को हमारे स्वरूप दामोदर राय रामानंद और उसी दृष्टि से पीछे से हमारे स्वर्ग गोस्वामी लोग और उन्हीं दृष्टि से उनके बाद में उनके अनुगत रूपानंद जो वैष्णव है उन्होंने देखा, उसी को इसी श्लोक को ये बतला रहे हैं। ये श्लोक किसका है? स्वरूप दामोदर जी का कर्चा है। कर्चा मैंने क्या है? कर्चा किसको कहते हैं? इसी श्लोक में और साधारण श्लोकों में क्या अंतर है? ये भी श्लोक है और वो भी श्लोक है। कर्चा कहते हैं उसको जैसे महाप्रभु जी की लीला देख रहे हैं और लीला देखते देखते और जब अपने घर पर गए अपनी कुटी में भजन कुटी में गए और उन्होंने देखा कि महाप्रभु जी ने ये लीलाएं सब प्रकाशित की और अपने स्वाभाविक छंदों में उसको नोट के रूप में लिख दिया। इसको कहते हैं और कारिका भी इन्हीं लोगों में से है। जैसे उपगोष उनकी मुरारी गुप्त का भी चर्चा था और गौरपाद इत्यादि ने सांख्य की कारिका लिखी। इन लोगों का कर क्या है उसको सूत्र रूप में लिख लिया। हम लोग गद्य में लिख लेते हैं, कोई पद्य में लिखे। उन्होंने कर्चा मैंने बंगला तैयारी में लिखा मुरारी गुप्त जी ने, कभी कर्णपुर में संस्कृत में लिखे। स्वरूप दामोदर जी उनकी सहज स्वाभाविक भाषा थी संस्कृत, इसलिए उसमें उन्होंने लिखा अत्यंत मधुर। अब वो हम लोगों के लिए आदर्श और उदाहरण हो गया। राधा कृष्ण प्रणय विकृत लादनी शक्ति स्मार्ट एक आत्मा नाद भूपुरा दिन भेदम गौत चैतन्यात्म प्रगत मधुना तद्वयम ऐक्यमाप्तम राधा भाव दुख से बलितम नौम कृष्ण स्वरूप। कितना बज गया? साढ़े पांच बजे आरंभ किया। आज इसे श्लोक का साधारण व्याख्या करके इनकी जो व्याख्या है और एक व्याख्या तीनों को याद होगी जगदानंद पंडित की प्रेम परिवर्तन में, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसका भी प्रकाश किया। हम दोनों की व्याख्या हम लोग करेंगे तब इसको अच्छी तरह से समझ सकें। साधारण इसका अर्थ यह है राधा कृष्ण प्रणय विकृति। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण की प्रणय विकृति रूप लागनी शक्ति के माध्यम से राधा कृष्ण स्वरूप पर एकात्मक एक आत्मा होकर के भी विलास के लिए नित्य ही राधा और कृष्ण दो रूपों में नित्य विराजमान। प्रारंभ से ही जगत आरंभ होने के पहले से ही नित्य गोलोक वृंदावन में ही ये दोनों दो रूपों में अवस्थित हैं विलास के लिए, वैसे एक हैं। पहले एक ही थे और दो हो गए, और पहले दो थे फिर एक। जागतिक बुद्धि से इसका सामंजस्य नहीं होगा, यह गवर हो जाएगा। इसका जन्म नहीं है और इसका जन्म है। कृष्ण का कृष्ण अजय है, यशोदा के पुत्र हैं। जगत में ऐसा नहीं है, किंतु उस जगत में कृष्ण में ये विरोधी भावनाएं भी परस्पर संभव। तो वो नित्य दो हैं और एक हो गए, और एक ही है दो हो गए। पहले कौन है? पहले एक है कि दो है? दोनों ही। एक रूप में चैतन्य महाप्रभु है और दो रूपों में, तो एक रूप में महाप्रभु क्या है? वो हम लोग जैसे आदमी जो भाव नहीं कर सकते हैं इस विचार को, उनके लिए कह दिया, उनके लिए कहा जो इस विचार को अद्भुत विचार को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उनके कहा अच्छा भाई ठीक है। तो कृष्ण ही अकेले थे और उनसे उनके बामन से राधा जी प्रकट हुए, यह समझानी थी। किंतु ऐसा कभी नहीं है जो राधा कृष्ण है ही नहीं है, वो नित्य ही है। और वही दोनों तत्व अभी एक स्वरूप में मिल करके चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। कब? अभी 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 कुछ दिन पहले, 400-500 वर्ष पहले। तब इससे मालूम होता है कि दोनों अभी मिल करके एक हुए हैं। अब फिर पढ़ते हैं पहले एक ही थे और उससे ये दो, कैसे ये हुआ? अब कल विस्तृत रूप से इस विषय का विचार करें। आप लोग भी देख करके आएंगे तब फिर समझ में आए। आज यही तक पंचा कई
मतलब्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः।
यंत्राद्रतंत मनुते समते चतुत्तम दैतानि मूतिरह कर्या दुहा पुत्रे तन्मयतया सर्वो भुनेदे तं सर्वभूतरिदं नाम प्रश्न तरैवात्मे न ज्ञानि चयादिना इति विज्ञानवादे तन्मय माम चरणं।
चैतन्य चैतान्यता आदि मिला चतुर्थ परिच्छेद। प्रश्नदास प्रजा स्वामी जी पहले चैतन्य महाप्रभु जी के जगत में अवतरित होने का गौण हेतु बतलाया। जो गौण हेतु बतलाए धर्म की स्थापना और युग धर्म की स्थापना, ये दो और मुख्य कारण है अद्वैताचार्य की प्रार्थना। और इसके बाद में ये बता रहे हैं चतुर्थ राधा या प्रमेय विकृति लादनी शक्ति स्मार्थ एक आत्मा नाव भूत राधे भेदम कौतु चैतन्यख्यम प्रकटमधुना तद्वयं च अत्यमाप्तं राधा भाव द्युत सुगदितं नौमि कृष्ण स्वरूप। ये श्लोक मूलतः स्वरूप गोस्वामी का कर्चा से लिया गया। महाप्रभु के अंतरंग में से एक है, दो अंतरंग प्रधान जिसमें की प्रधान में भी प्रधान अंतरंग ये स्वरूप भी जाने गए। महाप्रभु की प्रत्येक लीला को उन्होंने अपने कर्जों में लिख रखा। पीछे से यही गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी रघुनाथ दास गोस्वामी उन कर्जों को देख करके फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी ने करते समित ये सारी कथाओं को सुनाया। उसके आधार पर ये चैतन्य चैतन्य विश्वास करके स्वरूप गोस्वामी का कर्चा, मुरारी गुप्त का कर्चा, रघुनाथ गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की कथाओं को सुन करके ये चैतन्य चैतन्य उसका फल है। इसलिए ये बतला रहे हैं महाप्रभु जी के अवतरण का मुख्य कारण राधा कृष्ण प्रणय प्रकृति लाजनी शक्ति स्मार एकात्मानावत भूपुरा देहभेदम गतौत। सभावित भक्त ने ठाकुर जी गणेश का यह अर्थ किया। राधा कृष्ण की जो प्रणय है प्रेम का उन्नत भाव जो प्रणय है वही विकृत होकर के विकृत होता है तो उसको हलादनी शक्ति कहते हैं। वही शक्ति उसी शक्ति से परतत्व एक होते हुए भी दो रूप में राधा और कृष्ण के दो रूप में जगत में प्रकटित है और पुनः वो दोनों होने पर भी चैतन्य अख पहले ये चैतन्य के रूप में है एक रूप में और पीछे से ये दो हुए और फिर दोनों मिलकर के एक होकर के प्रकट अभिनय अभिनय प्रकटित होकर के अभिनय मैंने अभी ये स्वरूप दामोदर जी कह रहे हैं मैंने उस समय की बात जिस समय में ये लिख रहे हैं उस समय में ये चैतन्य महाप्रभु है वहां मिलाए कर रहे हैं। अधुना पर द्वयम ऐक्य आत्म एक हो गए और एक होकर के चैतन्य महाप्रभु जी हुए। ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कृष्ण के स्वरूप हैं किंतु राधा भाव भाव अन्य द्वितीय सुगलित हैं
इसलिए वह कृष्ण स्वरूप जो कि राधा जी के भाव और कांति से दिव्यमान है, जो चैतन्य के रूप में इस समय महाप्रभु के रूप में गौरचंद्र के रूप में जो प्रकटित है, मैं उसकी पुनः पुनः वंदना कर रहा हूं, नमस्कार उनको कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी अर्थ कर रहे हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देह भर, राधा और कृष्ण दोनों की जो आत्मा है वो एक है, दो रूप धारण किया, दो रूप धारण कर दिया। कैसे? एक कीड़ा होता है लंबा सा, उसको काट दो तो वो दो होने जाते हैं, मरते नहीं। कुछ वही जैसा है। और एक कोई लता होती है वो सभी लता है, उनको बीच से काट करके उसको लगा दिया तो दोनों में जड़े हो जाती है और दोनों से भी हो जाता है। तो एक ही लता है ना कि दो है, एक थी उससे फिर दो हो गई, हजार हो गई कलम के द्वारा। तो राधा कृष्ण देखने में दो है किंतु उनकी एक आत्मा है, ये दो दो देह धारण कर। यदि कृष्ण रास में हजार कृष्ण हो सकते हैं, हो सकता है ना हजार कृष्ण हो गए, तो राधा और कृष्ण दोनों में ही केवल ही वो हो सकता है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न है, उस शक्ति के द्वारा वो जो रूप में विभक्त हो जाते हैं, दो रूप धारण करते हैं। इसलिए अनन्य विलास रस आस्वादन करी, एक दूसरे का विलास जो है उसका आस्वादन, विलास में क्या आनंद है उसको आस्वादन करने के लिए दो देह को धारण कर। सही गुण वही देव जो राधा कृष्ण जो हुए हैं, इस समय चैतन्य गोसाई के रूप में प्रगटित हैं, भाव आस्वादित दो हैं, हृदय एक ठाई, वही दोनों अब भाव आस्वादन करने के लिए एक जगह हो गए। क्या भाव आस्वादन करेंगे? दोनों को भाव आस्वादन करने के लिए दो हो गए, अब कौन सा भाव बाकी रह गया जिसको आस्वादन करने के लिए एक हो गए? इथे लागी आगे को ही तहार भी बढ़, इसको अभी सहजना इतना सहज नहीं है, लाख जन्मों तक तर्क वितर्क करके समझने की चेष्टा करेंगे तनिक भी समझ में नहीं आए, और शरणागत होकर के इसको भगवान के शरणागत होकर के उन चीज को आसानी से समझ सकते, तर्क वितर्क के द्वारा नहीं कर, क्यों? ये अपराधिक तत्व अचिंत व्यापार है जिसकी मन से चिंता नहीं कर सकते हैं, किंतु कर सकते हैं शास्त्र अवधारणा मई बुद्धि के द्वारा। शास्त्र अवधारण बुद्धि माने क्या है? शास्त्रों के अनुसार में शास्त्र जैसा कर रहे हैं अनुशास्त्र, कृष्ण भी शास्त्र भी कृष्ण स्वरूप है, इसलिए इनको साधारण पुस्तक मत समझना, वो जैसे कृष्ण कृपालु हैं ऐसे शास्त्र भी कृपालु होते हैं। यहां तक कि वेद को माता कहा गया है, गायत्री को माता कहा गया है, उनमें सब शक्तियां हैं, वो अपने को जना सकती हैं, ऐसा समझ करके मंत्रों का पाठ मंत्रों का जप सब करना चाहिए, पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, प्रणाम करो, पहले प्रणाम कर दिया, मैं समझ नहीं सकता, आप कृपा करके हमको हमारे हृदय में अपना अर्थ प्रकाशित, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। जागतिक बुद्धि के द्वारा एक इतना भी नहीं, अगर संदेह आएगा और संदेह के द्वारा रही सही श्रद्धा भी, इसलिए कहते इथे लागी इसको समझाने के लिए मैं कही तहा, मैं आगे कुछ कह रहा हूं, विवरण कर रहा हूं, जहां तो है गौरांगे महिमा कथन, जिससे कि गौरांग की महिमा कुछ समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। उनको साधारण एक भक्त समझेंगे, कृष्ण का स्वरूप नहीं समझेंगे। अधिकांश लोग जो इन ग्रंथों को नहीं समझते हैं, उस परंपरा से संबंध नहीं है, महाप्रभु को साधारण एक भक्त। जैसे हमारे वृंदावन के और झोसी इलाहाबाद वाले एक महात्मा है प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी, झोसी में मूल रहने वाले थे। वो गीता प्रेस में बहुत दिनों तक काम उन्होंने किया, कार्य लेखन इत्यादि किया, पीछे से संत होकर के चले आए ये वृंदावन में, वृंदावन के उस पार में उन्होंने किया। तो उन्होंने सात खंडों या कितने खंडों में, पांच खंड में महाप्रभु जी की लीला जीवन चरित्र का अंकन किया है, सुंदर है प्रभु। किंतु होने पर भी उनको भक्त के ही रूप में उन्होंने वर्णन। उनका उपजीव्य ग्रंथ है चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत, कवि कर्णपुर का चैतन्य महाकाव्य और सब ग्रंथ हैं, उनसे लिया, साहित्यिक है लिखा। किंतु उनका जो विषय था, जो ये भगवान है कृष्ण है स्वयं लीला विलास के लिए इस रूप में, इस चीज को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उस रूप में उनको शिक्षा नहीं मिली। बहुत से लोग भागवत सुनते हैं, वो महाभारत सुनना अधिक पसंद करते हैं, ये कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, गोपियों के वस्त्र चुराना और गोपियों के साथ राष्ट्रनित्य इत्यादि करना ये गंदी बातें हैं, ये कृष्ण के चरित्र में नहीं है। कृष्ण का चरित्र ही अच्छा है, जिसमें कि उन्होंने विराट रूप विश्व दिखलाया और राजनीति अंतिम हद तक की, और बड़े वीर हैं, राधिका हैं कृष्ण रणनीतिका, राधिका है न कृष्ण प्रणय बिका। अब थोड़ा सा बतला रहे, राधा कमा न, राधा के बाद में कमा, कृष्ण प्रणय विकृति अथवा राधा हाइफेन कृष्ण, राधा कृष्ण प्रणय विकृति, ये प्रणय विकृति ही लागू है। कृष्ण का यदि हम कहें ये राधिका कृष्ण की प्रणय विकृति है, ठीक तो है, तो प्रणय अकेले नहीं होता, इस बात को समझो। राधा जी नहीं है, राधा जी कृष्ण की प्रणय की विकृति है ऐसा मान लें, जैसा कि यहां पर समझा जा रहा है शब्दों के ऊपर के अर्थ से, खूब गंभीर में डूबने की चेष्टा कर। उन्होंने प्रेम किया, प्रेम किया मैंने क्या, कोई और है, और कहा कौन रहा है, एक तीसरा व्यक्ति, उन्होंने प्रेम किया। अरे भाई किससे प्रेम किया, कैसा प्रेम किया, ये तो चीज है ना, उज्ज है नहीं है। वैसे यहां पर भी देखो, राधिका है ना कृष्ण प्रणविका, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा प्रणयधिकार मैंने सुनो, जैसे कोई माता है छोटे से नन्हे बच्चे को, अपने बच्चे को मैया मैया ऐसे करते हैं, तुतली भाषा में कुछ मुस्कुराता हुआ मैया के तरफ में आया और ऐसे ऐसे मानो अब गिरा भैया क्या करेगी, मुस्कुराती हुई और बच्चे को ऐसा करेगी, जब बच्चा निकट में आएगा तो भैया सड़क पीछे हट जाएगी, जरा चलना सीखे, अब मुस्कुराती रहे, हाथ ऐसे है कि कहीं गिर जाए तो चक पकड़ ले, ये जो हंसना है, आंखों में प्रेम के आंसू आने हैं, बच्चे को देख करके शरीर में रोमांच हो रहा है, ये विकृति है। अर्थात अस्तित्व सात्विक और संचारी भावों का होना इत्यादि भाव, मान रसमय भाव का हो। कृष्ण आ रहे हैं, आ कृष्ण को उठा लिया मैया ने, और अभी दो दांत कृष्ण के हाथ टूट ली, दांत दो दिखा करके थोड़े से कृष्ण ने मुस्कुरा दिया, मैया उनके ऊपर में फिदा हो गई, प्रेम की वर्षा लेकर के बच्चे को गोदी में चुंबन करने लगी, उसका शरीर छूट गया। ये सब है प्रणय का विकार। वैसे राधा जी को देख करके कृष्ण को और कृष्ण को देख करके राधा जी के जो भाव होते हैं अष्टशाक्तिक विकार परस्पर में होते हैं, अनुभव संचारी भाव होते हैं, प्रेम में एकदम डूब जाते हैं, पुलकित रोमांचित हर्षित हो जाते हैं, उन भावों को कहा गया यहां पर विलास। और विलास का यह है दिक्कत, ये प्रणय की दिक्कत है। जैसे छेना है, छेने को मल करके अच्छी तरह से कर करके उसको स्पंज बना करके, स्पंज कैसे बनता है कोई पद्धति है, स्पंज बना करके और उसको रस में डाल दिया और उसके प्रत्येक अणु में परमाणु में रस सिक्त हो गया और उसको उठा करके ऐसा करता रस मुख में डाल दो बस कितना सुख। ये है उसका अधिकार, छेने का अधिकार है। छेने खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा किंतु उसका विकार जो है छेने का बड़ा रसमय सुस्वादु हो जाएगा। इसलिए यहां पर राधिका है इन कृष्ण प्रणय विकार, प्रणय का विकार। राधा जी ने मन कर लिया, कृष्ण मना रहे हैं, राधा जी ने मुख इधर कर दिए, कृष्ण को चरणों पकड़ रहे हैं, वो उसको हटा रहे हैं, राधा जी के आंखों में आंसू भी हैं, कुछ हंसी भी है, कुछ क्रोध भी है। अब कृष्ण के आंखों में आंसू की बूंदें झलक रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये प्रणय का विकार। प्रणय का विकार ही ने रूप धारण कर लिया, इस प्रणय को ही महाभाव को, महाभाव जब रूप धारण कर लिया तो रूप, उस रूप को श्रीमती राधिका कहते हैं, इसी को लादिनी शक्ति कहते हैं। लादिनी मैंने क्या, वही भाव कृष्ण को उन्मत्त करा देता है, राधा जी को भी उन्मत्त करा देता है एक ही चीज अप्राकृत तत्व है, दोनों मिलकर के एक, किंतु दोनों दो रूप धारण किए। इसलिए राधिका हैं कृष्णे प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति राधनी नाम जहां, ये स्वरूप शक्ति है, हमारी दृष्टि शक्ति है, हमारी लड़ने की शक्ति है, हमारी क्रोध की शक्ति है, हमारी उदारता की शक्ति है, कृपा की शक्ति है, किंतु ये मूर्ति धारण नहीं कर सकती, किंतु कृष्ण की शक्तियां क्या करती हैं, बस मूर्ति धारण, ये विशेषता है। हमारी शक्ति सीमित अणु है, इसलिए राधिका जी कौन है, राधा कृष्ण के प्रणय के विकार हैं, जिनको स्वरूप शक्ति या लादिनी शक्ति कहा गया। लादिनी क्यों, लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी द्वारा करे भक्त पोषण। लादिनी शक्ति क्या, और लादिनी शक्ति कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, यह लादिनी शक्ति ही कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती, न रहे नहीं होगा। यह लादिनी शक्ति ही मूर्तिमान रूप में राधा जी हैं, और राधा जी मूर्तिमान होने पर भी उनमें भाव जो है वो लादिनी का भाव है। राधा जी लादिनी शक्ति अपने तरह तरह के भावों से, कोटि कोटि भावों से कृष्ण का सब प्रकार से आस्वादन कराती, यही लादिनी कोटि कोटि गोपियों के रूप में भी, उनका भी कोटि कोटि भाव एक एक गोपी हुआ, और तब उन भावों से कृष्ण को लादित कराती हैं। और क्या करती हैं, यह लादिनी शक्ति लादिनी द्वारा करे कृष्ण पोषण, भक्त पोषण। यह लादिनी शक्ति जो है कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा मात्र से ही अणु रूप में प्रत्येक जीवों के अंदर में उसी भक्ति का, उसी लादिनी के भाव को जिसको भक्ति कहते हैं, कण कण में होने पर जीवों के हृदय में प्रक्षेप करती हैं। प्रक्षेप करना मैंने कहा, एक बूंद जल ले लो और ऐसे कर दो तो क्या हुआ? लाखों टुकड़े होकर के गिरे, जिसको क्या कहते हैं फुहारे में मुख से लेकर के एक कुल्ला पानी फुर कर उड़ाओ, देखो ये कितना हो जाता है। ऐसे ही एक ही भाव जीव में अनंत कोटि जीवों में वो प्रक्षण करती है। इसलिए इसका मतलब एक ये हुआ, जीव के हृदय में फलाग्नि शक्ति नहीं है, ना? नहीं है, ऐसे समझ। इसलिए भक्त का उस फलाग्नि शक्ति उसमें संचयित करके उसका पोषण करती है। कहीं कहीं पर ऐसा कहा गया है, जीव के स्वरूप में सभी कुछ है, क्योंकि भगवान का अंश है, इसलिए भगवान का अंश होने से भगवान के में जो जो चीजें हैं सत चित आनंद संभी संधनी ला देंगे, जो कुछ भी है वो सब जीवों में होना चाहिए। किंतु उसे विचार करते समय एक और विचार करना है, भगवान स्वरूप शक्ति से युक्त जब होते हैं तब उनमें समस्त जितनी भी उनकी शक्तियां हैं वो सब भगवान में रहते हैं, तब जो अंश होता है उसको स्वांश कहते हैं, उसको कहेंगे स्वांश। समझ में नहीं आएगा सहज रूप में, किंतु खूब अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करो, और यदि आंख बंद करके नीचे यदि देखेगा ना, जैसे बहुत से लोग देख रहे हैं, तब तो एकदम समझ में नहीं। यदि कुछ कुछ आता भी यहां आंख बंद किया ना ऐसे कर दिया तो नहीं आएगा। इसलिए वक्ता की ओर अच्छी तरह से चातक की भांति प्यासा होकर के यदि कोई देखे तो कुछ कुछ आएगा। पूर्व शक्ति की भी जरूरत है समझने की। एक ही बात कह रहे हैं सभी लोग में से कोई एक दो आदमी समझेगा कोई। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाया तो सभी लोग समझ गए और सभी लोग बैकुंठ को उनके तरफ में चले गए, बैकुंठ पार गए लोग वृंदावन में। गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया तो केवल धुंधकारी गया और बाकी के रात गए, इसीलिए कि उनको समझ में नहीं आया। और अच्छी तरह से सावधानी से सुना नहीं आया तो रोज रोज सुनते हैं ये क्या बात है, तो मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया। खूब सावधानी के साथ में सुने, नहीं समझ में आया फिर वैष्णवों से जो सुने हैं जो सीनियर है उनसे सुनिए, उस पर भी समझ नहीं आए तो फिर वक्ता से पूछिए। तो भाई मतला रहा था, ये स्वरूप शक्ति जीव में है कि नहीं, वो हलादनी है कि नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं जो भगवान का अंश होने के नाते इसमें भी होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, समुद्र से पानी ले लो तो समुद्र के पानी में नमकीन खार इत्यादि जो जो गुण हैं वो सब उसमें होगा एक बूंद में, किंतु उसमें मगर सीप दरियाई घोड़ा दरियाई सांप और सब जो होता है उसे जो मृग संचरित होता है लहर ये सब होगा, है तो सभी चीज किंतु ये सब चीजें नहीं। यदि एक बूंद पानी आग में डाल दिया जाए तो आग उसको खा जाएगी, और अधिक पानी डाल दो तो आग बुझ जाएगी, पानी आग को खा जाएगा। इस तरह से समझो भगवान जब स्वरूप शक्ति के साथ उनमें सच्चित आनंद परिपूर्ण रूप में रहता है, उनमें हलाग्नि संबित संधनी इत्यादि शक्तियां रहती हैं, समस्त शक्तियों से वो जब युक्त होते हैं उनका जो अंश होता है वो है स्वांश। ये स्वांश कृष्ण के बलदेव प्रभु जी नारायण चतुर्भुज इत्यादि और जितने कुर्म मत्स अवतार इत्यादि युगावतार मन्वंतरावतार इत्यादि शेष सीमा शेषता अनंत देवता ये सभी स्वांश है, ये भगवत स्वरूप ही है, ये सभी क्या वो गतिदायक हतारी गतिदायक इत्यादि, उनमें भगवान के सभी गुण हैं। जिस रूप में वंश है उसी अंश में ये सभी गुण हैं, और जीव है विभिन्न अंश विभिन्नांश माने क्या? जब एक तटस्था शक्ति जीव शक्ति भगवान से युक्त रहती है उसमें उनका अंश जो होता है वो जीव, ये विभिन्न भगवान का अंश ही ममाई अंश हो, इसको समझो। केवल केवल उनकी तटस्था शक्ति की परिणति जीव है ऐसा नहीं, भगवान में जब तटस्था शक्ति अथवा जीव शक्ति होती है और उस समय उनका जो अंश होता है ये विभिन्न अंश होता है, स्वरूपगत बहुत अणु होता है। तो इसमें मान लो कि थोड़ा रहेगा भी किंतु उसका कार्य नहीं होता, जैसे एक परमाणु पानी में नौका नहीं चलेगी, सीप नहीं होगा, दरियाई घोड़ा और सांप नहीं होंगे, तरंगे नहीं होंगी, उसी तरह से माया के द्वारा ये आवृत हो सकता है विभिन्न अंश, किंतु स्वांश कभी भी नहीं होगा, वो माया का पति ही रहेगा, माया उसको कभी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए यहां पर कहते हैं और कहते हैं पोटेंसी है, शक्ति प्रकाशित नहीं है, इसको इस रूप में समझो, सब चीज की पोटेंसी है क्योंकि भगवान का भी कौन सा है ना, पोटेंसी के रूप में है किंतु प्रकाशित रूप में नहीं है, और स्वांशों में ये सभी चीजें परिपूर्ण है प्रकाशित। इसलिए कहते हैं यहां पर जीव गोस्वामी कह रहे हैं प्रभुपाद जी इसको कोट कर रहे हैं, अभी पाठ करेंगे तो कुछ निरस हो जाएगा, तो अभी हमने कुछ बतलाया है और कुछ थोड़ा सा बतला देता हूं, ये अपने समझने के लिए ये सब चीजें हैं, ये दार्शनिक सिद्धांत हैं, गौड़ीय वैष्णव की भित्ति है, इसको समझना है। इसमें प्रभुपाद जी ने पहला संदर्भ तत्व संदर्भ, कृष्ण संदर्भ और विशेष करके परमात्मा संदर्भ, प्रीति संदर्भ, इन सब चीजों से लेकर के इसकी तुलना देकर के बतलाया है। जी गोस्वामी के ये सब शब्द कोट किए हैं और तब ये बतला रहे हैं, यदि कहो तो थोड़ा सा पढ़े किंतु इसमें चला जाएगा यही समझने में, क्योंकि समझना भी बहुत जरूरी है, सिद्धांत ठीक नहीं रहेगा, रसमय की कथा सुनेंगे वो बेकार का जड़िया रस बन जाएगा, आधार यदि ठीक रहा, सिद्धांत यदि ठीक रहा, उस पर यदि चलेंगे तो ये स्थायी भक्ति रहेगी, नहीं तो भक्ति भी स्थायी नहीं रहेगी, इसलिए विचार पूर्वक इनको समझ करके चलना चाहिए। विषय खूब गंभीर है तो भी समझने की चेष्टा करनी चाहिए, एक बार दो बार दस बार बीस बार नहीं हुआ तभी इसको समझने की चेष्टा करेंगे, बार बार अपने आप वो समझ में आ जाएगा। इसलिए आज का वर्तमान पढ़ा लिखा समाज इतना चेष्टा नहीं करना चाहता, इसलिए इन चीजों को समझ नहीं कर पाता, इसलिए कहते हैं संस्कृत डेड लैंग्वेज है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भाषा जो अमृतमयी है वो धारणा नहीं कर सकते, पद पद में इसमें रस है, अलंकार है, अनुप्रास है, लोग नहीं समझ पाते, और इसी में हित है। वेद इत्यादि शास्त्रों की भाषा कैसी है? साहित्य है। साहित्य माने क्या?
हितेन सह वर्तमान,
हित माने परलोकगत हित, ये जागतिक हित सब कुछ उसमें वर्तमान है। आजकल जो सिनेमा और ये सब की पुस्तकें बनती हैं साहित्य, ये साहित्य है, ये विष है, ये सब साहित्य है। वेद में कथित हुआ है, कहा गया है कि भक्ति रेवैनं नयति, भक्ति रेवैनं दर्शयति, भक्ति पुरुषा भक्ति एव भूयसी इत्यादि, भक्ति भगवान जीव को भगवान के पास में ले जाती, बिना भक्ति के कोई भी जीव भगवान तक नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच सकता है। जो भगवान की यह भक्ति क्या चीज है, इस भक्ति में आधार के रूप में क्या संधिनी और ऊपर में संबित और भ्रातरी का भाव सार मिलित हुआ है, तब इसको कहेंगे भक्ति, और इसके ऊपर में और सब जो इसकी वस्तुएं हैं द्रव्य हैं संचारी अनुभाव विभाव सात्विक जब उचित परिमाण में एक जगह एकत्रित होंगे, मिलाए जाएंगे, तो उसको कहते हैं भक्ति रस। यही भक्ति रस लाग्नि शक्ति का मूल चीज है। जो शक्ति, जो वस्तु शक्ति भगवान को अपने आनंद के द्वारा उन्मत्त कराती है, उसका लक्षण क्या है? जी गोस्वामी जी संस्कृत में देने, उसका अनुवाद में पढ़ रहा है। माया भगवान को अतिक्रम नहीं कर सकती, माया भगवान को जना नहीं सकती। कौन माने? जरा माया, दुर्गा काली इत्यादि जो जरा माया है, जगत की अधिष्ठात्री जो महामाया है, माया माया द्वारा भगवान को नहीं जान सकते। वो भगवान से दूर एक विक्षेपात्मिका शक्ति द्वारा फेंक करके उसका स्वरूप को आवृत कर देती है। इसको कहते हैं अवरणा, उनको दुख क्लेशों को भुगाती है। और जोग माया जो शक्ति है, ये क्या करती है? भगवान से जोग युक्त कर देती है। यही जोग माया भक्ति का स्वरूप है। सांख्य के विचार से वस्तु शक्ति को प्राकृत सत्ता विशिष्ट माइक आनंद कहते हैं। कैसे? गोबर, गाय ने गोबर किया, गोबर से कुछ दिनों के बाद में दो तीन दिन रख दो, पुराना होने पर गोबरौला उसमें निकल जाएगा, और थोड़ा सा गोल गोल कर करके गोबर का टुकड़े को और गोला करता हुआ खींचता हुआ इधर उधर ले जाएगा। ये गोबरौला कहां से निकला? वैसे लोगों का कहना है अपने आप वस्तुओं के सम्मिश्रण से ये आत्मा उत्पन्न हो जाती है, उसमें ये ज्ञान इत्यादि आता है, और फिर वो जबकि हट जाते हैं एक दूसरे से तो उनका विनाश। असल में आत्मा शून्य है, शून्य से आया, और फिर शून्य में अधिकांश सांख्यकार इत्यादि भी इसी रूप में ले लेते हैं वस्तुओं को। लेकिन वस्तु कहां से आया? पदार्थ द्रव्य जो है कहां से आए? पदार्थों में गुण कहां से आया? इस पर वो विचार नहीं करते। इसलिए जो आनंद है, ये मन का जो आनंद या शरीर का आनंद, ये नहीं, असल में आनंद की कोई मूल चीज है। वो क्या है? वही है लाग्नि शक्ति। लाग्नि शक्ति स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति, उसको स्वीकार नहीं करने से ये आया कहां से? सामंजस्य। यदि कहा जो वो कहां से आ गया, वो कहां से आए? कृष्ण सब कारणों के कारण है, किंतु कृष्ण का कारण कौन है? तो ये अनुचित प्रश्न है। क्यों अनुचित होगा? आधुनिक लोग ये कहेंगे भगवान का स्वरूप वेद है, वेद है माता, माता जैसी कार्य मानो, नहीं तो तुम पिता पर संदेह हो जाए, पिता कहां से आया? वो समझता है जग जगत जब मैया से आए, असल में ये बेटा कहां से या बेटी कहां से आई, संतनी संतान कहां से आई? मैया के आधार पर पिता ने इसको रखा, उसे ये आया। ये साधारण चीज है, इसलिए कह रहे हैं जिसे वो मूल चीज कहां से आया, वही वस्तु है, वस्तु की शक्ति, शक्ति से ही इसकी हलादिनी वृत्ति है, उसी से जगत में आनंद है। मन में आनंद नहीं है, शरीर में आनंद नहीं। इस तो निर्विशेषवादियों का विचार दिया शंकराचार्य इत्यादि का, ये निर्विशेष से सभी शेष हुआ और उससे ये आनंद जो देख रहे हैं उसी से आया। नहीं नहीं, इसको भी मत समझो, निर्विशेष यदि है उसमें कोई गुण ही नहीं है तो कहां से आएगा? कोई गुण नहीं है, शक्ति नहीं है, रस नहीं है, विकार नहीं है, ये कहां से आएगा? इसलिए उसका भी खंडन किया जी गोस्वामी ने। यदि कहो ये जीव स्वरूप का आनंद है, ये आनंद जो अभी दिख पड़ता है ये जीव स्वरूप का आनंद है, नहीं, ये जीव स्वरूप का आनंद नहीं है। क्यों? जेहेतु नित्य होने पर जीव नित्य है भगवान की तरफ में, किंतु जीव अत्यंत क्षुद्र है, उसमें स्वरूप शक्ति नहीं छा सकती। इसलिए सर्वशक्तिमान भगवान में ही केवल एकमात्र लाग्नि संदिनी और संबित शक्तियां हैं शुद्ध रूप में। जीवों में कैसे हैं? कुछ विकृत होकर के सत्व रज और तम के रूप में अभी हैं। इसलिए भक्ति का आश्रय करने पर क्रमशः ये दूत हो जाती हैं और प्रभु का जो अपनी कृपा से स्वरूप शक्ति के द्वारा वो संदिनी रादिनी और संबित तीनों को निक्षेप करते हैं जीवों में, उसको धारण करने की पोटेंशियल जीवों में है। कैसे? आम, इमली, बबुल इत्यादि के बीज होते हैं, बीज को मट्टी में रख दो, पेड़ जो निकला वो कहां से आया? मट्टी से आया ना पानी से आया, बीज से ही आया। इसको प्रकाशित किसने किया? जल ने, मिट्टी ने, हवा ने, सूर्य की रोशनी से, इन पांचों तत्वों ने उसको पोषण करके तब फिर इसको। इसी तरह से जीवों के हृदय में जो ये तीन चीजें हैं वो भी भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में अच्छी तरह से समझाया। स्वरूप शक्ति तो नहीं है किंतु स्वरूप शक्ति की आंशिक प्रवृत्ति जीवों के स्वरूप में है। आप यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो कभी प्रवृत्ति है, इसलिए स्वरूप शक्ति का यह भाव उसमें है पात्रता के रूप में। और जब वो शक्ति संचरित होती है तो जिस प्रकार से सीप में वो मोती हो जाती है, उसी प्रकार से जीव के हृदय में वो भक्ति के रूप में राजनी शक्ति वर्धित होकर के कृष्ण को भी आनंदित करती है। इसलिए जीव स्वरूप में वो नहीं है। मैं तो फिर निक्षेप करने की बात क्यों आती? स्वरूप शक्ति की वृत्ति देते हैं ऐसा क्यों कहते? इसलिए समझो ये अव्यक्त रूप में पोटेंशी के रूप में है, जरूर है। नहीं यदि रहे तो किसी भी चीज से कोई भी चीज हो जाएगी। आ रहा समझ में? यहीं पर सब कारणवाद को नहीं मानना हुआ है, किस रूप में है किस रूप में नहीं है इस पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने संपूर्ण रूप से जीव में अंश अनुरूप में है, लेकिन तो लेट पोजिशन में है, ये उसी के ऊपर में ये भक्ति है। सबसे पहले जीव के हृदय में संबित के रूप में, शुद्ध सत्व के रूप में ये संधिनी आती है, संधिनी, और उसके ऊपर में फिर संबित भाव के रूप में, और उसमें आनंद मिलकर के ये तीनों चीज एकत्रित होने तो भक्ति होती है। ये राधिका जी की स्वयं की वृत्ति है और इसी के द्वारा कृष्ण को भी आनंद मिलता है, इसलिए भक्ति के द्वारा कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। भगवान इसी शक्ति के द्वारा, स्वरूप शक्ति की लागिनी वृत्ति के द्वारा तत्त आनंद, अन्य तत्त आनंद क्या? दास सख बात्सल्य मधुर, अन्य भक्तों को प्रदान करके और उसमें उद्बोधित करते हैं, यही सत सिद्धांत है। भगवान में लाभनी शक्ति नित्य वर्तमान है, इसी को निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी लोग नहीं स्वीकार करते। वो कहेंगे क्या? वो निर्गुण निरंजन अव्यक्तान आदि हैं और शक्तिहीन है, विलासहीन है, जितना अ है सब उसमें लगा देते हैं। अच्छा। बहुत है किंतु मैंने जो हमको जरूरत है उतना लिया। कहलादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन स्वयं रूप में करती हैं और अपनी कुछ जीव के हृदय में संचेत करके हलादिनी शक्ति का संबित और संधिनी का जीव के हृदय में उसे प्रकटित करा करके उसके द्वारा भी कृष्ण को आनंद कर सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद, एक ही चीज शक्ति तार भरे तीन रूप, एक ही शक्ति उनकी तीन रूप धारण करती है, संधिनी संधिनी संबित और लादिनी। संधिनी कहते हैं सत्ता को प्रकाश करने वाली शक्ति। जगत में हम जो कुछ सत्ताएं देखते हैं, आंखों से, हाथ से पकड़ते हैं या छूते हैं, देखते हैं, ये सब क्या चीजें हैं? ये संधिनी का आंशिक और विकृत प्रतिफलन है। विकृत क्यों? ये नष्ट हो जाते हैं, ध्वंस हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और जो मूल चीज को वो प्रकाशित करती है गोलोक वैकुंठ में, भक्तों के शरीर को, वहां के पृथ्वी को, वहां के मट्टी, जल, वायु और वृक्ष, नदी, नाले, गाय, माता पिता, भाई बंधु, ये सब क्या है उनका स्वरूप? ये चिन्मय होने से नित्य है। जीव के हृदय में ये मिश्र है और इस जगत में जड़ है, स्थूल है। एक ही चीज शक्ति का भारतीय रूप आनंद अंश ह्लादिनी, असद अंश संधिनी, चित अंश संबित, जरे ज्ञान करी ज्ञान। तो संबित संधिनी से हुआ ये सत्ता विस्तार करने वाली शक्ति को समझो, असंधिनी माने ज्ञान और ज्ञान के ऊपर में भाव। ज्ञान माने ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ऐसे बढ़ते 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 ये जगत का ज्ञान होने का नाम ये ज्ञान। किंतु ज्ञान से काम नहीं चलेगा, जब वही ज्ञान जब हृदय में आता है तो इसको कहते हैं भाव। इस भाव से भक्ति का संबंध है। ये बुद्धि विवेचन इत्यादि करती है, ज्ञान विवेचन करता है अच्छा बुरा इत्यादि, और हृदय हृदय में भाव। आनंद अंश हलादिनी, संद से संदिनी, चिद अंश से संबित, माने पहले ज्ञान इसके बाद में भाव, और आनंद से आनंद संबित। अब हम लोग थोड़ा सा प्रेम विभक्त से इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं, ये श्लोक को। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी इत्यादि श्लोक, अखंड अद्वय ज्ञान सर्व तत्वस्ता, अखंड ज्ञान जो है, बदंति तत्व विदत तत्व यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, एक अखंड तत्व है। अखंड होने पर भी कैसा है? अद्वय ज्ञान तत्व है। अद्वय इसलिए कहा, नहीं तो जगत के लोग नहीं समझेंगे। दो है किंतु एक ही है, एक है फिर भी दो है, इसलिए अद्वय। इस बुद्धि से उसका हम सामंजस्य नहीं कर सकते हैं। गुरु परंपरा की युक्ति बुद्धि से और शास्त्र की बुद्धि से हम उसको समझ सकते हैं। अखंड अद्वय ज्ञान सर्व तत्व सार। अखंड ज्ञान किसको कहते हैं? जैसे मान लिया कि कृष्ण है, अब कृष्ण में उनकी सारी शक्तियां हैं, सारी शक्तियों के द्वारा ये विश्व ब्रह्मांड का सृजन भी करते हैं, उनसे नाना प्रकार के अवतार निकलते हैं, उनसे शक्तियां निकलती हैं, उनके स्वांश और विभिन्नांश ये तत्व भगवत अवतार और जीव भी निकलते हैं कोटि कोटि, और इन जीवों को अपने भोग के अनुरूप में तरह तरह के ऊपर से ये शरीर भी मिले हुए हैं और उनको ये भोग करा रहा है। ऐसा जेल खाना जिसमें हथकड़ी और बेड़ी, आसक्ति रूपी बेड़ी और हथकड़ी एकदम कस करके जनजीव से बांध दिया गया है, स्थूल नहीं, हथकड़ी बेड़ी से चल नहीं सकते, किंतु मन को हथकड़ी बेड़ी रोक लेगी। और प्रभु ने इस जगत में हमें दे करके हथकड़ी बड़ी क्या लगाया, चलो फिरो घूमो, किंतु ऐसी हथकड़ी जो तुम्हारा मन ही दर दर नहीं जाएगा, संसार में आसक्त रहेगा और अपने दुखों को भोगो, कहां जाएगा यहां से, भागने का कोई स्थान नहीं। ये सब को लेकर के भगवान भाव भग वान, भग से युक्त गाड़ीवान, ऊंटवान, हाथीवान, तिलवान, पहलवान, जो पहल करते हैं ना ऐसे, वो पहलवान, गाड़ीवान है ना, ये सब ऐसे भगवान भग से युक्त भव माने क्या? छह प्रकार के भव, सब प्रकार के गुण, ऐश्वर्य ऐश्वर्य और वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य, इनसे युक्त हैं जो जगत में किसी में नहीं है। और भगवान भव भरण पोषण करने वाले जगत के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भरण पोषण करते हैं, सबके जन्मदाता वही है। जगत की सृष्टि करने वाले भी वही है, ध्वंस करने वाले वही है, पालन करने वाले वही है। भ माने भरण पोषण करता, ग माने गमयिता नेता, नेता माने सबका संचालन करने वाला, हवा का संचालन, पानी का संचालन, समुद्र का, टाइम का, सब काल इत्यादि सबको संचालन करने वाला। शाम सुबह ये होती है कैसे, इसका सब संचालन कौन करते हैं? सूर्य मत समझो, सूर्य को भी संचालित और चंद्र को भी जो संचालित करते हैं, सभी ग्रह नक्षत्रों का संचालन, यह है गौ। वह अखिल प्राणियों में जो वास करते हैं, अखिल प्राणी जिनमें वास करते हैं, ये सब मिला करके भगवान, ये समस्त विश्व मिल करके तब ये भगवान है। राजा, राजा माने क्या?
मंत्री, प्रजा, लोग, देश,
मंत्री, प्रजा, राज्य, पुलिस इत्यादि सब मिलकर के सरकार। सरकार माने क्या? कोई कोई चीज है ना, ऐसे ही भगवान एक सामूहिक ये शब्द है। जब समूह के रूप में लेते हैं तो इसको भगवान कहते हैं, और अन्यथा वो कृष्ण है, वही है कृष्ण। इससे बढ़कर के उनका और कोई दूसरा नाम नहीं है। सब जगत को आकर्षण करते हैं, अपने प्रेम के आकर्षण से सबको चला रहे हैं। ये है अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान अखंड, कभी खंड नहीं होता। अब इस चीज को हम काट करके खंड खंड कर देंगे, भगवान का खंड नहीं। तो ये जीव और ये अवतार और ये सब कहां से आए? खंड नहीं है। खंड जैसा तुम देख रहा है किंतु हाय सब उसी के अंतर्गत में अखंड है। अखंड ज्ञान के अंतर्गत में सब कुछ है, उन्हीं को कोई परमात्मा, कोई ब्रह्म, किसी ने उनको भगवान और किसी ने उनको स्वयं भगवान कहा। चेई तत्व दंड पर नाम बार बार, मैं सबसे पहले उसी तत्व के लिए दंड बार बार दंड और प्रणाम कर रहा हूं जो वो हमको ये चीज समझने के लिए ऐसी शक्ति दे। आज यही शक्ति की प्रार्थना करके हम लोग आज का वक्तव्य समाप्त करें बात, और कल इस चीज को अच्छी तरह से समझें। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो आ जाइए। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो महाभगन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमाम। हा देवी काकुवर गदगदयाद्यवाच जाचे निपत्त भूवि दण्डवतोद्भटारति अस्य प्रसादमभूतस्य जनस्य जित्वा गन्धर्विके निजगणे गणनम् अङ्गश्यामलिञ्छताभिरभि मन्दे कृतेन्दीवनम् जातं जागुदरोचि सन्विदधतम पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्य निवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्द निवेशितोज्जलभुजं ध्यानं भक्त्याविहीनापराधलक्ष्यै चित्तास्य कामाभितरण्यमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणा गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कर्तव्याभाव पुत्रे पन्मयतया सर्वोभिनेदो तं सर्वभूतैर्दयम् भूमान् तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम् भजामि राधम् नित्रम् स्मरामि राधम् मधुरस्मितास्यम् वदामि राधम् करुणाभराद्रम् ततो मम नास्ति
गतिः।
अखंड अद्वैत ज्ञान समझने के लिए ऐसे समझिए, एक ही परतत्व कृष्ण है, उनकी अनंत शक्तियों में से तीन प्रधान चित शक्ति, चित शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति, चित शक्ति माया शक्ति और बीच में जीव शक्ति तत्पश्चात शक्ति उनको कहते हैं। अपनी चित शक्ति के द्वारा, स्वरूप शक्ति के द्वारा कृष्ण अनंत वैकुंठ को प्रकाश कर खुद अपने स्वयं वृंदावन में ब्रजन विनंदन के रूप में नित्य प्रकाशित रहकर और अपने अवतारों को वैकुंठ के विभिन्न प्रदेशों में स्थापित कर जो चिन्मय धाम वहां का है, चिन्मय शरीर है, चिन्मय सब कुछ है, उनको जो प्रकाश करते हैं अपनी चित शक्ति के द्वारा और अपनी माया शक्ति के द्वारा अनंत ब्रह्मांडों को प्रकाश करते हैं। उन ब्रह्मांडों में जीवों के शरीर और ये विश्व की जो चीजें हम अपने आंखों से देखते हैं इन सबको अपनी जड़ माया से प्रकाशित करते हैं और दोनों के बीच में विचरण करने वाले एक अपनी अचिंत शक्ति अघटन घटन शक्ति के द्वारा अपनी तटस्था या जीव शक्ति के द्वारा अनंत कोटि जीवों को प्रकाश करके उनको स्थूल लिंग शरीरों से आवृत कर ये यही मैं हूं ऐसा उनमें अभिमान लगा करके दोनों जगत में विचरण करने योग्य बनाते हैं। ये जितनी चीजें हैं सब एक के अंतर्गत है, दो नहीं है, इन सब में अचिंत भेदाभेद है, इसलिए ये सब अद्वैत ज्ञान के अंतर्गत ये सब चीजें हैं। मैं उनको प्रणाम करके इस श्लोक का अर्थ बतलाने के लिए चेष्टा कर रहा हूं। ये कौन कह रहे हैं? प्रेम विभक्त को बनाने वाले जगदानंद जी कह रहे हैं। सही तत्व कहू दुई राधा कृष्ण रूपे, ये तत्व कभी राधा कृष्ण के रूप में दो रूपों में है और कहू एक परात्पर चैतन्य स्वरूप और वही कभी एक परात्पर चैतन्य के रूप में, एक महाप्रभु के रूप में और दूसरे राधा कृष्ण के रूप में। दोनों तत्व अनादि अनंत सब समय, आगे पीछे का प्रश्न नहीं है, दोनों एक ही साथ है। तत्व वस्तु सदा एक सदा अद्वितीय भाव, तत्व तो अद्वितीय है किंतु फिर भी राधा कृष्ण ये दो और चैतन्य महाप्रभु एक तीसरे, इन तीन रूपों में दिखाई पड़ता है। द्वितीय नहीं है, अद्वितीय माने जिसका दूसरा नहीं हो, एक ही है किंतु फिर भी एक ही तत्व वस्तु ये तीन रूपों में प्रतिभात है, एक साथ एक समान। वस्तु वस्तु शक्ति माझे किचु नहीं भेद, वस्तु और वस्तु की शक्ति में कोई भी भेद नहीं, फिर भी भेद है। जब कहा जा रहा है कि दोनों एक हैं तो इसका मतलब जो दो क्यों कहा था? दो भी है, भेद नहीं है। अब किस रूप में भेद है, किस रूप में भेद नहीं है,
ये किंतु समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ये तो समझना खूब सहज है, जो शंकर जी को जो फूल चढ़ाया जाता है
भतूरा,
भतूरा का बीज जो है वो खाने से आदमी पागल हो जाता है या मर जाता है। किंतु धतूरा में बीज कैश क्यों है ये नहीं जाना जा सकता। पागल हो जाता है उसमें है वैसा चीज, किंतु क्यों है उसमें? आग में जलाने की शक्ति कैसे है, इस चीज में जलाने की शक्ति क्यों नहीं है? आग ऐसे टुनटुन नहीं बजती है क्यों? वो जला क्यों देती है? पानी सबको भिजा क्यों देता है? ये क्यों का उत्तर नहीं है। यही वस्तु शक्ति वस्तु से अलग और वस्तु से भिन्न भी है, अभिन्न भी, एक होकर के दो है। कैसे है अपनी मेधा से नहीं जाना जाएगा। श्रुति अर्थापन्ना, गुरु परंपरागत जो श्रुतियां हैं उनके अनुसार में ऐसा समझ, वो भी नहीं समझेगे बिना साधन के। एक वस्तु 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 शक्ति माझे किछु भेद नहीं, कृष्ण है वस्तु, राधा जी हैं शक्ति, तो ये दो हैं। ये समझना कठिन है कि ये दोनों एक हैं, किंतु दोनों दो हैं ये समझना कठिन नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि दोनों दो हैं। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? दोनों दो हैं ये तो समझ में आ रहा है, किंतु ये बड़ा भारी कठिन है जानना कि ये दोनों एक है। ये जानना, ब्रह्म को जानना बहुत सहज है। ब्रह्म निर्गुण है, अनादि है, निष्क्रिय है, ये जानना सहज है, क्योंकि हम देखते ही नहीं है उसकी कोई क्रिया। देखते हैं कोई भी क्रिया नहीं है, अनादि निष्क्रिय अनंत निर्गुण ये सब हम लोग देख रहे हैं, किंतु वही परब्रह्म साक्षात अजन्मा होता हुआ रूप है, निर्गुण होता हुआ भी उसमें लाखों अनंत अप्राकृत सद्गुण है, ये जानना बड़ा भारी कठिन। परब्रह्म परिपूर्ण स्वयं सिद्ध आत्माराम आत्मकाम होते हुए भी चोरी करता है, झूठ बोलता है, रोता कलपता है, प्रेम की भीख मांगता है, ये सब समझना बड़ा भारी कठिन है। ब्रह्मा जी निर्गुण ब्रह्म को जानते हैं, उनको कोई आश्चर्य नहीं होगा। नारायण को देख करके भी आश्चर्य नहीं होगा, किंतु कृष्ण की बालभगत लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं। ये कैसे वो ब्रह्म यहां पर झूठ बोल रहा है और बच्चों का जूठा खा रहा है, मैं भी किसी का जूठा नहीं खाता और ये ब्रह्म होकर के जूठा खाता है, झूठ बोलता है, इसकी भूख लगती है और ये अनजान की भांति दर दर में घूम रहा है, मैंने बछड़ों को चुरा लिया इसको पता तक नहीं, ये विचित्र बात। इसलिए भगवान का निर्विशेष रूप में कोई भी संदेह कोई भी कुछ नहीं है अधिक, किंतु भगवान की इन लीलाओं को समझना, जानंत एव जानंतु किं मे बहुत्वा न बक्सो बक्सो वैभवं तव गोचर। इसलिए वस्तु वस्तु शक्ति करेंगे दो नहीं? और फिर करेंगे कुछ भी भेद, ये बड़ा भारी कठिन है, इसको जान लेना। आग और आग की शक्ति ले लो।